साक्षी मंथन के साथ बैठी थी और अपने पुराने दर्द को याद कर रही थी। वो इस वक्त काफी ब्रोकन फील कर रही थी और मंथन उसको सहारा दे रहा था। काफी देर तक साक्षी मंथन के कंधे पर सर रखकर रोती रही, जबकि मंथन चुपचाप उसके पास बैठा था। मंथन ने अपने मन में कहा, मुझे हमेशा से अपने नाम, रुतबे और डैड की पोजीशन से नफरत थी। क्या फायदा इतना पावरफुल होने का जब आप अपनी बेटी के साथ ही इंसाफ न कर पाओ। बेचारी साक्षी दी ने कितना कुछ झेला है। उनके साथ जो गलत हुआ सो हुआ, ऊपर से डैड ने उनके साथ जो किया वो उससे भी ज्यादा गलत था। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हमेशा दी डैड को ही सपोर्ट करती आई हैं। मंथन को अपने पिता मिस्टर निशांत आहूजा थोड़े कम ही पसंद थे। वो उनसे थोड़ी बहुत बात करता था तो उसकी वजह साक्षी थी। काफी देर की चुप्पी के बाद मंथन ने साक्षी की तरफ देखकर पूछा, दी, डैड ने इतना कुछ होने के बावजूद आपको चुप रहने के लिए कहा, क्या आपको उन पर गुस्सा नहीं आता? आप अभी भी उन्हें उतना ही प्यार करती हैं और उनकी मीटिंग से लेकर हर एक चीज अच्छे से अरेंज करती हैं। मंथन की बात सुनकर साक्षी ने उसकी तरफ देखा, फिर उसने जवाब में कहा, तुम डैड को अच्छे से जानते नहीं हो और तुम्हें ये क्यों लगता है कि उन्होंने उन्हें ऐसे ही जाने दिया होगा? उन्होंने अपने तरीके से सब हैंडल किया था और यही वजह है कि मैं उनसे नफरत नहीं करती। मतलब क्या है आपके कहने का? डैड ने क्या किया था? मंथन ने हैरानी से पूछा। जो बातें बीत चुकी हैं उनके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, साक्षी ने धीरे से जवाब दिया। अब उसका मूड काफी हद तक सही हो चुका था। साक्षी वहां से उठकर जाने को हुई तभी उसके पास आरफ का कॉल आया। साक्षी मंथन के सामने आरफ का कॉल पिक नहीं करना चाहती थी। मंथन ने आरफ का नाम देख लिया था क्योंकि मोबाइल वहीं काउच पर था। मंथन ने खुद से ही कह दिया, आप इनसे बात कर सकती हैं, ये आपके फ्रेंड हैं। उस दिन हमारी फाइट हुई थी, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे इनसे प्रॉब्लम है। साक्षी ने उसकी बात पर हामी भरी और मंथन के सामने ही कॉल पिक कर लिया। मंथन साक्षी को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, इसीलिए वहीं पर बैठा रहा। दूसरी तरफ से आरफ बोला, तुम अपने दिल्ली जाने का प्लान 3 दिन के लिए पोस्टपोन कर दो। और मैं ऐसा क्यों करूं? हम तो बस थोड़ी देर में निकलने वाले ही थे, साक्षी ने रुकने से मना कर दिया। एक तो तुम हर छोटी बात पर बहस बहुत करती हो, परसों मेरी और आयो की रिसेप्शन पार्टी है, तुम मेरी इकलौती फ्रेंड हो, तुम पार्टी में नहीं आओगी तो मेरी पार्टी अधूरी रहेगी, आरफ ने जवाब दिया। उसने साक्षी को इन्वाइट करने के लिए कॉल किया था। आरफ को पार्टी में आने के लिए हाँ कहने से पहले साक्षी ने मंथन की तरफ देखा और फिर माइक पर हाथ रखकर धीरे से कहा, परसों आयु और आरफ की वेडिंग रिसेप्शन पार्टी है और वो हमें इनवाइट कर रहा है। साक्षी के माइक पर हाथ रखने के बावजूद आरफ को उसकी बात सुनाई दे गई थी। वो जल्दी से बोला, एक्सक्यूज मी, मैंने सिर्फ तुम्हें इनवाइट करने के लिए कॉल किया है, अपने भाई को मत लेकर आना। ठीक है, हम रुक जाएंगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से पार्टी अटेंड कर सकती हैं, मंथन ने मुस्कुराकर जवाब दिया। वो साक्षी को किसी भी चीज के लिए रोकना नहीं चाहता था, खासकर पार्टी जैसी चीज के लिए। मंथन भी चाहता था कि साक्षी ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिले और पुरानी बातों को याद करके दुखी ना हो। मंथन के हाँ कहते ही साक्षी ने मोबाइल वापस अपने कान पर लगा दिया और आरफ से कहा, ठीक है, हम आ जाएंगे, कहकर साक्षी ने कॉल कट कर दिया। वहीं आरफ इस वक्त कबीर के साथ मौजूद था। वो कुछ खास लोगों को कॉल करके इन्वाइट कर रहा था। गेस्ट लिस्ट देखने के बाद आरफ ने कबीर से कहा, छवि सिंघानिया को इनविटेशन कार्ड भेज दिया है ना, मैं चाहता हूँ छवि सिंघानिया, रोहन सिंह और जहान को स्पेशली हमारी रिसेप्शन पार्टी का इनविटेशन मिले। अपनी फैमिली पार्टी में दोस्तों रिश्तेदारों को बुलाया जाता है। आप इकलौते इंसान हो जो अपने दोस्तों के बजाय अपने दुश्मनों को इन्वाइट कर रहे हो, कबीर ने सिर हिलाकर कहा। कबीर की बात सुनकर आरफ ने तिरछी मुस्कुराहट दी और कहा, जो मजा दुश्मनों को जलाने में आता है वो दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करने में कहा। दिल तो कर रहा है इन दोनों को पर्सनली कॉल करके इनवाइट करूं, पर मैं जानता हूं कि ये इतने बेशर्म है कि इनविटेशन कार्ड से ही आ जाएंगे, इन्हें कॉल करके इनवाइट करने की जरूरत नहीं है। आप जहान को इसमें इंक्लूड मत कीजिए, मैंने अभी तक जहान को नहीं बताया है कि वो जिसे ट्रेनिंग दे रहा था उससे आपकी शादी कर ली है। इस वक्त वो हमारे काफी काम आ रहा है तो मैंने सोचा कि पहले अपना काम निकलवा लेते हैं, पनिशमेंट तो होती रहेगी, कबीर ने कहा। हालांकि आरफ ने जहान को सबक सिखाने के लिए कहा था, लेकिन दुबई जाने के बाद वो उसी में लग गया और आकर रिसेप्शन पार्टी की तैयारी होने लग गई। इन सब के बीच आरफ ने जहान से पर्सनली इंटरेक्ट नहीं किया था। ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी चीजें देख लेना, फिलहाल के लिए मुझे मेरी मिसेस खुराना को देखना है, सुबह रूम से बाहर निकली थी और अब तक मेरे सामने नहीं आई है, आरफ ने जवाब दिया और वहां से आयु को देखने के लिए जाने लगा। आयु से बात करने के लिए अयान उस वक्त घर पर आया हुआ था, वैसे भी गौरवी जी ने उसे घर आने के लिए कहा था। अयान भी आयु को साक्षी के बारे में बताना चाहता था,
तो उसने गौरवी जी को मना नहीं किया और खुराना मेंशन आ गया था। आयु अयान के साथ डाइनिंग एरिया में बैठी थी और दोनों बातें कर रहे थे। अयान को वहां आए हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ था। दादी से तुम मिल चुके हो, अब मुझे बताओ कि तुम्हें साक्षी दी से कब प्यार हुआ और तुमने अभी तक उन्हें बताया क्यों नहीं, आयु ने धीमी आवाज में पूछा। वो कब से अयान से इस बारे में बात करने का मौका ढूंढ रही थी। अयान ने जवाब में कहा, सर्जरी के बाद वो कुछ दिनों तक हॉस्पिटल में रही थी तो मुझे वो अच्छी लगने लगी। उसके बाद जब भी चेकअप के लिए आई, हम बाहर या फिर हॉस्पिटल के कैंटीन एरिया में थोड़ा वक्त साथ बिताते थे। वो बहुत अच्छी है, इतनी सेंसिबल और सीधी है कि उनसे तो किसी को भी प्यार हो जाए, अयान ने खोए हुए अंदाज में जवाब दिया। वो साक्षी में खोया हुआ था, तभी उसने फ्लो फ्लो में बोल दिया, साक्षी जैसी लड़की से किसी को भी प्यार हो सकता है, उनका बिहेवियर काफी सॉफ्ट है, लेकिन पता नहीं भाई ने क्या सोचकर तुमसे प्यार किया। आयु पहले से ही आरव से गुस्सा थे, ऊपर से अयान की ऐसी बातें सुनकर उसका मूड और बिगड़ गया। आयु ने तिरछी निगाहों से अयान को देखा और फिर उसके हाथ पर मारते हुए कहा, तुम ये क्या बोल रहे हो, क्या कमी है मुझ में जो कोई लड़का मुझसे प्यार नहीं करेगा, क्या मेरी शक्ल अच्छी नहीं है? अयान ने आयु की तरफ देखा और जवाब में कहा, सिर्फ शक्ल अच्छी होने से नहीं होता, बिहेवियर भी अच्छा होना चाहिए। जब देखो गुस्सा करती रहती हो, जब से आया हूँ नोटिस कर रहा हूँ मूड सड़ा हुआ है, बताओ क्या हुआ है? तुम्हारे भाई उस खड़ूस खुराना के साथ रहकर किसी का मूड अच्छा हो भी कैसे सकता है? वो जब देखो मुझे इस बात का ताना मारता रहता है कि मैंने उससे बदला लेने के लिए शादी की थी। ठीक है, मुझे हो गई थी मिसअंडरस्टैंडिंग, आई अग्री, मैंने सॉरी भी बोल दिया और सब भूल कर आगे बढ़ने के लिए तैयार भी हूँ, लेकिन नहीं, जब तक वो दिन में दो बार टाइम से मुझे इस बात का टोंट नहीं मार देता तब तक उसका खाना हजम नहीं होता। खाने से याद आया, मेरा कब से कुछ स्पाइसी और अलग खाने का मन कर रहा था, पर देखो इस जालिम इंसान ने मुझे जंक नहीं खाने दिया। पता है मैंने खाना मंगवाया था लेकिन सिक्योरिटी गार्ड ने उसे वापस भेज दिया। आयु ने अपने दिल की सारी भड़ास एक साथ निकाल दी। अयान गौर से उसकी सारी बातें सुन रहा था, फिर उसने गहरी सांस लेकर छोड़ी और धीमी आवाज में कहा, लगता है फिर से तुम्हारे पीरियड स्टार्ट होने वाले हैं, तभी तुम्हें मूड स्विंग्स हो रहे हैं, स्पाइसी खाने से कुछ नहीं होगा, तुम चॉकलेट खाओ, रुको मैं लेकर आता हूँ।
अपनी बात कहकर अयान किचन में गया और आयु के लिए आइसक्रीम और चॉकलेट लेकर आया। आयु ने चॉकलेट खाते हुए कहा, तुम न सच में मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, मुझे इस वक्त किसी सच्चे दोस्त और अच्छी चॉकलेट की बहुत जरूरत थी। पता नहीं तुम्हारा भाई तुम्हारे जैसा क्यों नहीं है, तुम श्योर हो ना कि वो तुम्हारा भाई है? बोलते हुए आयु ने इमोशनल होकर अयान को हक कर लिया। अयान ने आयु को सहलाते हुए कहा, हाँ वो मेरे भाई ही हैं और इसमें कोई डाउट नहीं है, बस ना तो हमारी शक्ल मिलती है और ना ही बिहेवियर, पर हैं हम ही भाई ही। तुम चाहो तो हमारा डीएनए टेस्ट करवा सकती हो। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, तुमने कह दिया वही काफी है, आयु ने जवाब दिया। आयु अयान के गले लगे हुए थे और उससे बातें कर रही थी, तभी आरव वहां आया। उन दोनों को गले लगे हुए देखकर वो उन्हें बुरी तरह घूर कर देख रहा था। अयान ने आरव को देख लिया तो वो तुरंत आयु से अलग हो गया। अयान ने बात को संभालते हुए कहा, दोस्त है मेरी, अब बात बात पर हक करने की आदत है, इतनी आसानी से थोड़ी ना जाएगी, अयान ने अपनी तरफ से सफाई दी। आयु पहले ही आरव से गुस्सा थी तो वो चिढ़ते हुए बोली, तुम इसे एक्सप्लेनेशन क्यों दे रहे हो, इस इंसान को मुझसे कोई मतलब नहीं है, पता है इसने मुझे यहाँ इसीलिए रखा है ताकि दिन रात सास की तरह मुझे ताने दे सके। कभी कभी मुझे यकीन नहीं होता कि तुम दोनों भाई हो, लेकिन छवि सिंघानिया, आई मीन तुम्हारी मॉम से मिलने के बाद मैं यकीन से कह सकती हूँ कि ये इंसान डेफिनेटली उसी औरत का बेटा है, उसी की तरह जिद्दी और घमंडी। आयु ने बातों बातों में क्या कह दिया था इसका उसे एहसास भी नहीं था। उसकी बात सुनकर अयान ने सिर पकड़ लिया। उसने इशारे से आरव को रिलैक्स रहने को कहा, क्योंकि वो जानता था कि आयु ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। एक बार के लिए आरव उसे खुद को धोखा देने के लिए माफ कर सकता है, लेकिन अभी अभी उसने आरव को छवि सिंघानिया जैसा बताया। अयान के मना करने के बावजूद आरव पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने गुस्से में आयु का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए ऊपर ले जाने लगा। आयु भी उसके ऐसा करने पर घबरा गई। वो अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, ये क्या कर रहे हो, पागल तो नहीं हो गए हो, मुझे इस तरह खींचकर क्यों लेकर जा रहे हो, मुझे नहीं जाना तुम्हारे रूम में। अयान भी उनके पीछे आने लगा। वो आरव को समझाने की कोशिश कर रहा था, प्लीज भाई रिलैक्स कीजिए, आयु नहीं जानती है कि मॉम और आपके बीच क्या हुआ है, इस बात को यहीं जाने देते हैं ना, आयु आपसे सॉरी कह देगी। अयान की बात सुनकर आरव चलते हुए रुक गया। इससे उसे लगा वो आयु पर गुस्सा नहीं करेगा। आरव अयान की तरफ को मुड़ा और सर्द आवाज में कहा, भाभी लगती है ये तुम्हारी, बेहतर होगा इस घर में उसे इसी नाम से बुलाओ, और ये हस्बैंड वाइफ के बीच का मैटर है,
बेहतर होगा कि तुम हम दोनों के बीच में मत आओ। आरव ने जिस लहजे में अयान से बात की थी उससे अब आयु को भी आरव से डर लगने लगा था। आरव ने आयु का हाथ पकड़ा और उसे अपने कमरे में ले आया।